मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
जय। बोलेगा पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय।
अपन लोग पूजा के बारे में पिछले कई दिनों से विचार कर रहे हैं। पूजा परिणामों की निर्मलता के लिए की जाती है और अपने अंतरंग में थोड़ी देर के लिए कषायों को, उनके वेग को कमजोर कर दिया जाता है, उनको मंद कर दिया जाता है। अपन ने कभी भी पानी में घड़ा भरते हुए स्वयं भी ये प्रक्रिया की होगी और दूसरे को भी देखा होगा। तो पानी में अगर घड़ा डाल दो तो नहीं भरता, पर पानी का घड़े में भरना तब शुरू होता है जबकि घड़े का मुख धीरे धीरे झुकना शुरू होता है, और जितना जितना वो झुकता चला जाता है उसमें से हवा निकलती जाती, पानी भीतर प्रवेश करता जाता है। तो ठीक ऐसे ही जीवन के घड़े के बारे में भी अपन को विचार करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन इन सब अच्छाइयों से भरा पूरा हो और कैसे हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं वो दूर हों। तो बहुत सीधा सा उपाय है कि हम श्रद्धा से झुकना सीखें। पूरी जिंदगी भी शायद हम इस बात का अभ्यास करें तो कम है, और जितनी भी ये अनुष्ठान रखे गए हैं उन सब के पीछे उद्देश्य यही है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, व्रत उपवास इत्यादि करना, वो सब कुरल काव्य में तिरुवल्लुवर आचार्य लिखते हैं कि जिसके भीतर विनय नहीं है तो वो तो मृत देह के समान है, क्योंकि जितनी अकड़ मृत देह में होती है उतनी और किसी में नहीं होती, ऐसा लिखते हैं। जहां जीवन है वहां विनय ही शोभा देती है, और जहां जीवन नहीं है वहीं पर कठोरता है। जितने भी अनुष्ठान है हमारे भीतर की उस कठोरता को दूर करने के लिए है। कठोरता कषायों से आती है और कषायों के अभाव में ही हमारे भीतर विनय आती है, उसी का अपन प्रयास कर रहे हैं। जहां सज्जनता दिखाई पड़े, जहां साधुता दिखाई पड़े, जहां अपने से अधिक गुण दिखाई पड़े वहां पर हम झुकें। जब जब भी हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तब भी हमें झुकना ही आवश्यक होता है। अपन सामान्य जीवन में भी देखते हैं, ग्राहक को कुछ सामान बेचना है तो कैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ, कितना विनय के साथ हम उससे पेश आते हैं। अब अपना काम जब हमें किसी से बनाना होता है तो हम विनय से पेश आते हैं। भैया, जब ऐसे सांसारिक चीजों में हम विनय का इतना ध्यान रखते हैं तो फिर अपने आत्म कल्याण के लिए भी अपने जीवन को पूरा श्रद्धा से और विनय से भर लेवे तो उसमें क्या हर्ज है। ऐसा विचार करके और पूजा के माध्यम से हमारे भीतर विनय आवे, ऐसा हम पिछले दिनों से अभ्यास कर रहे हैं और आगे इस पूजा को समझते हैं। थोड़ा सा और शेष रहा, मैं तो सोचता था कि पूरी नहीं हो पाएगी, पर ऐसा लगता है कि हो जाएगी पूरी। हाँ, हो ही गई समझिएगा। हमने भगवान के सामने जो भी द्रव्य अर्पित किए हैं उन सब के पीछे कितनी गहरी भावना है। द्रव्य समर्पित करना फिर महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जबकि हम उसके पीछे छुपे हुए भावों को महत्व देने लगते हैं। फिर कैसा लगता है कि ये द्रव्य तो बहुत छोटी पड़ गई, हमने तो जो है जल ही तो चढ़ाया था, हमने तो सामान्य सा चंदन चढ़ाया था, हमने तो अक्षत पुष्प और नैवेद्य चढ़ाए हैं, लेकिन कितनी छोटी छोटी सी चीजें। चार ठो तो दाने चढ़ाए हैं पुष्प के, लेकिन कितनी बड़ी हमने भावना अपनी बनाई है। वो भावना ही महत्वपूर्ण है। द्रव्य को महत्वपूर्ण कौन बनाता है? महंगी द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं है, द्रव्य को महत्वपूर्ण बनाता है हमारे भावों की निर्मलता। हमारे भाव बनाते हैं द्रव्य को महत्वपूर्ण। किसी को कोई चीज देते हैं और कोई चीज देते समय उससे कह दें कि ले लो, आज तक नहीं मिली होगी तुम्हें ऐसी चीज है, तो वो देना नहीं देना व्यर्थ हो गया। किसी को भोजन करवा के और फिर बाद में कहें कि कैसा लगा, कभी कभी पिता के जमाने में भी खाया नहीं होगा, ऐसा खा ले, ऐसा कह दें तो वो खाया ना खाया बराबर हो। और अगर रूखा सूखा भी दिया लेकिन प्रेम से और बड़े विनय पूर्वक हमने दिया है तो वो रूखा सूखा भी बहुत कीमती मालूम पड़ता है। ऐसे भैया टूटी फूटी जैसे अपन से, इसका मतलब ये नहीं लेना कि हम टूटी फूटी ही पहले से खराब द्रव्य लाएं। हम तो बहुत श्रेष्ठ द्रव्य संजो के लाए थे, लेकिन कहां है वो भगवान के सामने श्रेष्ठ? भगवान की नजरों में तो संसार की कोई भी चीज श्रेष्ठ नहीं है देखा जाए तो। उनको हम क्या भेंट करेंगे मूल्यवान? उनके दृष्टि में तो संसार की सारी चीजें मूल्यवान होती तो छोड़ते क्यों, उन्हें तो उससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज मिल गई है। एक वो था व्यक्ति, तो उसकी बहुत, उसको मालूम पड़ा कि बाबा जी के पास में पारस मणि है और जिसको कि इस लोहे से छुला दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। तब कैसे बाबा जी से वो ली जाए? तो उसने बड़ी सेवा करी बाबा जी की और सेवा के फलस्वरूप वो मिल जाएगी। बाबा जी भी समझ रहे थे कि सेवा करने का इनका उद्देश्य अलग ही है। समझते सब हैं ऐसा नहीं, भगवान भी समझते होंगे कि कैसी पूजा कर रहे जी हमारी। हाँ, वो तो तीन लोग के नाथ हैं, कौन सा उद्देश्य लेकर के आए, अपने जीवन को अच्छा बनाने का या अपने जीवन में कुछ संसार की चीजें जोड़ लेने का? क्या उद्देश्य है, संसार बढ़ाने का उद्देश्य है या कि अपने संसार से पार होने का उद्देश्य है? तो 12 वर्ष गुजर गए, वो सेवा करता सुबह से शाम तक, पैर धांत दबाना, भोजन की व्यवस्था करना, जो जितना उससे बनता था सब करता। एक दिन जो है, और 12 वर्ष के बाद गुरुजी ने कहा बाबा जी ने कि बोल क्या चाहिए। बस वो तो इसी का इंतजार कर रहा था कि किस दिन बाबा जी कहें कि क्या चाहिए। तो उसने कहा कि आपसे क्या कहूं, हमने सुना है कि आपके पास एक पारस पत्थर है, आप अगर हमारी सेवा से प्रसन्न हो तो वो दे दो हमें। अब बाबा जी जिस कुटी में रहते थे तो खप्पर वाली कुटी थी, तो उनने कहा देख तो वो तो रखा, उतने दिन हो गए वो रखा हुआ है, उसमें जो खप्पर थे उनके बीच में एक डिब्बी में रखा हुआ है, उठा ला। उठा के लाया वो तो रस्ते में उसके मन में आया कि अरे लोहे की डिब्बी में रखा है और कहते कि पारस पत्थर है, जसोने की हो गई।
इसके मन में जब वो जितना उत्साह था उस डिब्बी को लेने का, डिब्बी हाथ में आते ही साथ इसके उत्साह रहा नहीं है, कोई ना कोई बात है। और बात यही होगी कि इसके मन में आ गया होगा कि सोने की डिब्बी क्यों नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा कि खोल के देखो उसमें पारस पत्थर है। तो पारस पत्थर तो था लेकिन एक कागज में लिपटा हुआ था, मेले से कागज में लिपटा हुआ था। बाबा जी ने कहा कि ये चाहिए ना, 12 बरस की तपस्या के फलस्वरूप तुमने एक तो ये पारस पत्थर मांगा और उसमें भी संदेह तुम्हारे भीतर है कि सही है ये कि नहीं है पारस पत्थर। तो सुनो, ये डिब्बी लोहे की अभी तक सोने की हो गई होती अगर इसके संपर्क में आई होती, पर बीच में ये जो मलिन कागज का आवरण है उसकी वजह से जो है आज तक इसका संपर्क नहीं हो पाया। तुम मेरे जैसे हो गए होते अगर ये आशक्ति तुम्हें पारस पत्थर की नहीं होती तो 12 बरस में हमारे जैसे हो गए होते। अब ले जाओ पारस पत्थर, ले जाओ। ये जो आवरण चढ़ा हुआ है वो आवरण ही तो हमारे और भगवान के बीच में बाधक बना हुआ है। हम हो गए होते आज तक जो है भगवान, लेकिन हमारी अपनी सांसारिक इच्छाएं, हमारी अपनी सांसारिक कामनाएं, वो तो हमारी नहीं छूट पाती। भैया पूजा का उद्देश्य ये है कि जैसे जैसे हम विसर्जन करते हैं, रोज विसर्जन करते हैं, तो रोज भावना खाते कि भगवान हम रोज इकट्ठा भी कर रहे हैं संसार चलाने के लिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। जब अवसर आएगा तब हम उसको फेंक करके और अपने कल्याण के लिए जा सकते हैं। ऐसा जो है, फिर कितनी भी धन संपत्ति रखो अगर उसके प्रति आसक्ति नहीं है, किसी भी दिन छोड़ी जा सके सहज रूप से, तब फिर हमारा जीवन गृहस्थी में रह करके भी और अपने कल्याण के लिए। लोग पूछते हैं कि गृहस्थी में रह के कैसे कल्याण करें, तो भैया यही तो उपाय है। उस रोज रोज द्रव्य के विसर्जन से सीखें कि किसी भी दिन अवसर आ जाए तो इस सारी संपत्ति को हम विसर्जित कर सकें बिना किसी संक्लेश के। जैसे हमने जोड़ी है वैसे ही छोड़ करके हम जा सकते हैं, ऐसा जो है सीखना चाहिए इससे। आज अपन भगवान के सामने दीप चढ़ाते हैं तो दीप चढ़ाते समय क्या पढ़ रहे हैं, उससे हमारे भाव कैसे होना चाहिए। जे त्रिजग उद्यम नाश कीने मोह तिमिर महाबली। कैसे हैं भगवान हमारे? बहुत बहुत बलवान हैं। लोग तो सोचते हैं कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला ही बलवान है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने तीनों लोकों में ऐसा पुरुषार्थ किया, कैसा पुरुषार्थ किया कि मोह के तिमिर रूपी जो महाबली था उसको ही समाप्त कर दिया। दूसरे के मोह को नहीं, अपने स्वयं के मोह को। सबसे ज्यादा बलवान कौन है सारे कर्मों में? तो मोह कर्म है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ संसार में कौन सा है? तो कहते उस मोह पर विजय प्राप्त कर लेना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तीनों लोकों में ऐसे पुरुषार्थ को किसने किया है? तो तीन लोक के नाथ अनंत भगवान है, उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया। उनकी अपन प्रशंसा कर रहे कि भगवान मैं तो इस संसार में मोह की वजह से रुल रहा हूं और आपने उस बलवान मोह को भी बड़ा पुरुषार्थ करके जीत लिया। कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। और जैसे ये जो है आपने घातिया कर्मों का नाश किया, चार घातिया कर्मों में एक मोहनी कर्म है और उसके साथ तीन और हैं, तो एक मोहनी और तीन और तीन, इस तरह से चार घातिया कर्मों को नाश करके और आपने ज्ञान के दीप को जला लिया है, अपने भीतर ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर लिया है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो आपके सामने ही भांति दीप प्रज्वल, आपने अपने अंदर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर ली है, मैं ये ज्ञान के दीप के प्रतीक रूप ये ज्योति जला रहा हूं। कंचन के सुभाजन में खचू और काय में सोने के, बताइएगा कंचन के सुभाजन में खचू, उस दीप को मैंने कहां रखा है? सोने के बर्तन में उसको रखा है। स्वर्ण को अपन सबसे श्रेष्ठ धातु मानते हैं, तो यहां वही अर्थ ले लो भैया श्रेष्ठता का, कि जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाता, ऐसे ही नहीं सीधा सीधा कि अब सोने के ही में रखेंगे तभी ठीक माना जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ है कि जो श्रेष्ठ हो सकता है उसमें ही एक काम तो किया जा सकता, पर मैं कहता भी नहीं हूं और कहने का मन भी बना रहता है, पर कह देता हूं। अपन लोग ने जो है ना धीरे से अपने मंदिरों में और लोहे को भी महत्व देना शुरू कर दिया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। स्टील क्या है? लोहा ही है भैया, लोहे से ही बनता है। उसमें तो कम से कम इतना तो कर लो कि अपन जो आजकल बहुत जल्दी से अभिषेक करने के लिए पांडुशिला खरीद के ले आते हैं वो भी स्टील की आने लगी है, या कि स्टील के टंकियों में के ऊपर धर देते हैं भगवान, स्टील की थाली में रख देते हैं भगवान को, हैं? और सिंहासन भी स्टील के बनने लगे हैं। ये मैं मानता हूँ कि बहुत महंगे रखेंगे तो चोरी चपाई का डर रहता है, तो भैया पीतल ने क्या बिगाड़ा? वो तो नहीं है महंगा, गिलट आता है, पीतल आता है, ऐसी धातुएं हैं जो कि ज्यादा महंगी भी नहीं है और कोई के लिए चोरी का मन भी नहीं होता है, तो उनका उपयोग भले ही कर लें, लेकिन इन जगहों पर, बाकी तो नहीं कह रहा हूं, पर थोड़े इन दो तीन स्थानों पर जहां हम अभिषेक करते हैं, जहां भगवान को सिंहासन पर बिठाते हैं, तो ऐसी धातु का उपयोग ना करें। सबसे कहना चाहिए निकृष्ट धातु मानी गई है हाँ लोहे को, वो कम से कम धर्म के कार्य में कील तक नहीं उपयोग में लाते थे। पहले बाजोट जो होते थे उनमें हमने देखा कि पीतल की कील से ही पीतल का वो मढ़ देंगे ऊपर, अब तो जो है बहुत सारे नई नई चीजें आ गई, वो ठीक है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम श्रेष्ठ द्रव्य और श्रेष्ठ चीज लाएं, अपनी जो जितनी क्षमता है उसके अनुसार। सोने की नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम ऐसी भी ना रखें जो कि एकदम निकृष्ट हो, ऐसा उसमें दीप जला करके और हम भगवान की आरती उतार रहे हैं, काय के लिए उतार रहे हैं, ताकि हमारे भीतर भी ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो। किसकी आरती उतारना, दुनिया भर की नहीं, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रज। मैं दीप के द्वारा आरती उतारूं तो सच्चे देव गुरु शास्त्र वीतरागी पर अपने परमार्थ के लिए। बाकी जो संसार में अपन आरती उतारते हैं वो बिल्कुल सांसारिक है, उसको उसको ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ उसका, लेकिन यहाँ जब अपन मंदिर में हैं तो देव गुरु शास्त्र की जो आरती कर रहे हैं उस समय कैसी भावना है अपनी, यही भावना है कि मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो। दीप कैसा है, सपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करिहीन, अंधकार को मिटाने वाली और स्वपर प्रकाश करने वाली। दीपक के उजाले में दीपक को भी देखा जाता, दीपक को देखने के लिए अलग से दीपक तो लाना नहीं पड़ता, और जो जो चीजें रखी हुई है वो सब भी प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ज्ञान दीप है, एक बार जल जाता है तो अपनी आत्मा का अनुभव भी हो जाता और सारे लोक के तीनों लोक के पदार्थ भी झलकने लगते हैं उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में। ऐसे केवल ज्ञान रूपी ज्योति के लिए मैं ये दीप समर्पित कर रहा हूं, ऐसी भावना से अपन दीप चढ़ाएं। जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह सम उद्यत लसे, और कैसे हैं भगवान, फिर अपन भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, दूसरे ढंग से कर रहे हैं। कर्म तो हो गया ईंधन, ईंधन मतलब ये जैसे लकड़ी वगैरह होती ना, ये सब ईंधन कहलाता, उसके माध्यम से क्या प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह सम उद्यत लसे, जिन्होंने अग्नि के समूह के समान उस कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है। स्वयं जो है आचार्य को अग्नि की उपमा दी गई, जल की भी उपमा दी गई, पृथ्वी की भी उपमा दी गई है, समुद्र की उपमा दी गई है। ये क्यों दी गई है, उनके अलग अलग अर्थ हैं। कहते आप अग्नि के समान दैदीप्तमान हैं, प्रतापी हैं, क्यों हैं? अग्नि के समान दूसरे को जलाने वाले हैं ऐसा नहीं, अग्नि के समान प्रतापी हैं, प्रज्वलित हो रहे हैं, और आपने अपने उस प्रताप से अग्नि के समान जो प्रताप है उससे कर्म रूपी ईंधन को जला दिया। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती वैसे ही आपने अपने आत्मा के उस प्रताप को, उस अग्नि को प्रज्वलित करके, और तप की अग्नि ही श्रेष्ठ अग्नि मानी गई है सब अग्नियों में, उस तपस्या की अग्नि के द्वारा आपने भगवान सब कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है। बर धूप तासु सुगंधता करी सकल परिमलता हसे, और श्रेष्ठ उससे क्या निकला बताइएगा, जब कोई भी चीज जलती है तो जलने के बाद क्या शेष रह जाता है, सारा वातावरण कैसा हो जाता है, चंदन जलाओ तो है चंदन जलता चला जा रहा है और सुगंध फैलती चली जा रही है। ऐसा ही जो है यहाँ उपमा दी गई कि बर धूप तासु सुगंधता करी सकल परिमलता हसे, सब तरफ परिमल जो है वो सुगंध के लिए भी उपयोग में आता है, तो सब तरफ सुगंधित फैल गई है, और जो धूप हमने जलाई है वो स्वयं सुगंधित थी, वो स्वयं जलती चली जा रही और चारों तरफ सुगंध फैला रही है। ई भांति धूप चढ़ाए, धूप किस प्रकार, इस प्रकार से चढ़ाई जाए जिससे कि सारा वातावरण सुगंधित हो, ऐसी तपस्या करी जाए जिससे अपने तो कर्मों का ईंधन जले लेकिन आस पास के वातावरण में सुगंध फैलती चली जाए। ये कौन करता है, अरंत भगवान ही है, जो अपने चार घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं तो सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। केवल ज्ञान के 10 अतिशय पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि भगवान को इधर केवल ज्ञान होता है और उसके बाद जो अतिशय प्रकट होते हैं वो सब जीवों के कल्याण करने वाले प्रकट होते हैं। वही यहाँ पर भावना है, धूप चढ़ाए नित भव जलन माही नहीं पचूं, और मैं इस धूप को जला करके ये भावना भा रहा हूं कि मैं इस संसार के जो अग्नि है, संताप है संसार का, उसमें मैं और ज्यादा अब रचू पचू नहीं। मेरा संसार जैसे ये धूप जल गई है ऐसे ही, इसलिए आठों कर्मों के दहन के लिए धूप को प्रतीक माना गया है। सारा संसार ही नष्ट हो गया, कर्म नष्ट हो गए तो संसार नष्ट हो गया। ये धूप जैसे जल रही ऐसे ही मैं तपस्या के द्वारा अपने अंतरंग के कर्मों को भी जलाऊं और संसार से पार हो जाऊं, ऐसी भावना से धूप चढ़ा रहे हैं अरहंत भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने और गुरुओं के सामने। अग्नि माही परिमल दहन, ये सुगंधित जो द्रव्य हैं वो अग्नि के भीतर जलते जाते हैं जो चंदन आदि हैं, लेकिन उनके गुण जो है वो प्रकट होते चले जाते हैं। जितने जितने हमारे भीतर से कर्म जलते चले जाते हैं उतने उतने हमारे आत्मा के गुण जैसे प्रकट होते चले जाते हैं, ऐसे ही जो है ये धूप भी जैसे जैसे जलती जाती है वैसे वैसे इसकी सुगंध और अधिक बढ़ती चली जाती है। हम इस धूप को चढ़ा करके, अब आजकल तो धूप ऐसे ही खे देते हैं, कई लोग पूछते भी हैं कि महाराज हिंसा बहुत होती है धूप में इसलिए हम नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है क्या, तो हम क्या कहें, देखा तो इन्होंने ये है, उसकी सुगंध ही नहीं। मंदिर के वातावरण में प्रवेश करते साथ मंदिर की एक गंध अलग होती है, मंदिर की अपनी ध्वनि अलग होती है, लेकिन वो सब चीजें खत्म हो गई। अब तो मंदिर भी ऐसा बना रहता है कि कब बाजू में घर बना हो तो वहां से किचन में से जो भी गंध आ रही वो सब मंदिर में आ रही, नहीं होता कई कई मंदिरों में। अब यहाँ तो अपना अच्छा है कि डिटैच है सब तरफ से कोई भी नहीं, तो कई जगह हमने देखा कि मंदिर पूरे चारों तरफ से घरों से घिरे रहते हैं, तो अगर किसी का बाजू में टॉयलेट बना हो तब तो बिल्कुल और क्या स्थिति बने, हो जाता कई जगह, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मंदिर की सुगंध अलग से, मंदिर में प्रवेश करते ही साथ दीप और धूप की सुगंध से अपने ऐसे की पवित्र वातावरण में आ गए हैं, ये इस बात का प्रतीक है भैया। जैसे कि समो शरण में प्रवेश करते ही साथ वहां की गंध जो 10 प्रकार के अतिशय हैं, सुगंधित पवन चल रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है, वैसा ही जो है समो शरण में जैसे अपन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा भाव आना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। अकेले डेकोरेट करने से नहीं होता, अकेले मार्बल लगा देने से और अकेले ग्रेनाइट लगा देने से मंदिर की शोभा बढ़ती हो, ऐसा नहीं है। आज तो यही चल पड़ा है, भारी मात्रा में जो है इस तरह की चीजों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि मंदिर में क्या चीज जो है होनी चाहिए। मंदिर में तो रोशनी है, दीप जल रहा है भगवान के सम्मुख और धूप खेई जा रही है उसका वातावरण, प्रवेश करते ही साथ जो है और एक अलग प्रकार की सुगंध, चंदन का तिलक लगाने वाले को चंदन की सुगंध आ रही है, केसर की गंध आ रही है, धूप की गंध आ रही है, इस प्रकार की ये अलग ही है जो कि घर में नहीं आती है, वैसा होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में और क्या कहूँ विशेष, नहीं तो आप कहेंगे कि महाराज शायद ऐसा चाह रहे हैं कि धूप जलाई जाए, मैं उसका समर्थन या उसका आपको वो तो नहीं कहूँगा, पर इतना तो जरूर है कि ये सब चीजें आनंद तो देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये बात अलग है कि हम लोगों ने प्रक्रियाएं बदल करके और अपने हाथ से ही, जिसको अपन कहते अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकना, मेरे ख्याल से तो मैं यही मानता हूँ इन चीजों को, कोई बहुत बहुत बुद्धिमानी नहीं है कि हमने, देखो कितनी हिंसा करते हैं रोज घर में, नहीं करते क्या, और इसमें दिख रही है कि थोड़ी सी धूप खेदी अगर अपन ने तो बस हिंसा दिखने लगी, एक ठो दीप जला के आरती कर ली तो हिंसा दिखने लगी, अब बिजली जलाएंगे तो नहीं होगी क्या, पंखा चलाएंगे तो नहीं होगी क्या, कितने वायु कायक कितने अग्नि कायक जीव मरते हैं उसमें नहीं होगी क्या, इसमें तो दिखती है। लेकिन ठीक है आपको जैसा करना हो, पर यहाँ तो आचार्य महाराज जो पूजा लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि धूप जलती चली जाती, सुगंध फैलती चली जाती, मन प्रसन्न होता जाता है, कि ऐसे ही तो हमें भी अपने जीवन में अपने कर्मों को नष्ट करके और अपने आत्मा की सुगंध प्राप्त करनी है। लोचन सुरस ना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, मुंह पे न उपमा जाय वर्णी सकल फल गुण सार। हम किस बात से भगवान की उपमा दें, दुनिया में जितने भी फल हमने प्राप्त किए हैं वे सब इसके सामने निष्फल हैं, इन्होंने तो सभी फलों में श्रेष्ठ मोक्ष का फल प्राप्त कर लिया है, सब सब फलों में सार अगर कोई है तो मोक्ष है। और लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, अच्छा सा कोई खाने का मीठा सा फल हाथ में आ जाता है तो क्या देख करके लोचन कैसे होते हैं, हर्षित हो जाते हैं, वाह कितना बढ़िया मीठा आम, और रसना जीभ में पानी आ गया देख करके कि मीठा है, और घ्राण गंध भी उसकी आ गई, वो वाले फल हैं ये आते कि नहीं आते हैं, और बड़ा उत्साह होता कि मैं इसको खाऊंगा। कहते वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष का फल ही जो है जिसको प्राप्त कर लिया भगवान ने, भगवान को देख करके हमारे मन में लोचन पवित्र हो जाए और हमारी रसना हमारी इंद्रियां सारी घ्राण जैसे कि एक सामान्य सा आम का फल देख के प्रसन्न होती हैं, उत्साह जागृत होता है, ऐसे ही भगवान के दर्शन से उनके आसपास उठने वाली सुगंध से और हमारे उसमें सारी इंद्रियों में तृप्ति आ जानी चाहिए, ऐसा भाव लेकर के हम भगवान के सामने क्या चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं। ये फल बहुत पीछे छूट जाएगा, वो मोक्ष फल के सामने इस फल की कोई कीमत नहीं है। कैसा फल है ये, एक बार हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं तो फिर बार बार वास्तव में भगवान के दर्शन करते समय
सारे सारा शरीर रोमांचित हो जाता है। कहीं कोई जब तक पूजा करते किसी को भूख लगती है क्या, बताओ तो? कुछ और करने की इच्छा होती है नहीं, ऐसा मन लीन, पांचों इंद्रियां और शरीर लीन हो जाता पूजा में, और किसी स्थिति में नहीं हो सकता। ध्यान रखना आप, ये आप प्रयोग करके देख लेना। अगर खूब ठाट बाट से पूजा कर तो सब उसी में, शरीर भी उसी में लीन हो गया। मन का थोड़ा गड़बड़ है, मन कभी कभी भटक जाता यहां वहां, उसको भी लगा लेंगे। वाणी तो सार्थक, शरीर भी, बाकी तो और कोई उपाय नहीं। गृहस्थ जीवन में अपने पांचों इंद्रियों को गृहस्थ जीत सकता है क्या? कितने जीत सकता है? घंटे भर पूजा करे तो सारी इंद्रियों को बिना उसके जीत लिया उस। वो कह रहे हैं कि इस तरह हम फल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे तो नयन भी, हमारे घ्राण भी और हमारी रसना भी सब तृप्त होती चली जा रही। सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रस सचूं। मुझे इस मोक्ष का फल जो कि अमृतमयी है, फिर जन्म मरण नहीं करना पड़ता है, मैं कहां से लाऊं आपको अमृत फल चढ़ाने के लिए? लेकिन कामना जरूर उस अमृत फल की कर रहा हूं, चढ़ा तो रहा हूं छोटा सा फल, लेकिन मैं कौन से फल की, अमृत फल की, मोक्ष फल की आकांक्षा लेके आया हूं? ऐसे अर्थ से पूरण, अर्थात ऐसे भावों से, अर्थ का मतलब यहां भाव लेना, ऐसे भाव से भर करके और फिर हम भगवान के सामने फल चढ़ा रहे हैं। देवगुरु शास की पूजा में जे प्रधान फल फल विषय पंच करण रस लिए। सारे फलों में सबसे प्रधान फल कौन सा है, जिस जो कि पांचों इंद्रियों और मन को तृप्त कर दे? वो कौन सा फल हो सकता है जिसमें पांचों इंद्रियों और मन तृप्त हो जाती? मोक्ष फल ही है भगवान। इसलिए मैं इस फल को चढ़ाता हूं। और हमें तो कई बार लगता है कि जैसे अपन अदला बदली कर रहे हैं कि जो तुम ले लो हमें वो दे दो है? भगवान के सामने कि जी 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 सब नैवेद्य ले लो आप, तो हमारी मन हमारी भूख मिटा दो आप है? जैसे डॉक्टर के सामने रुपए फेंक के कहते कि हमारो तो रोग ठीक कर दो, जो चाहे तुम जितनी पैसा लेने सो उतने ले लो। ऐसा हम कह रहे कि भगवान जी श्रेष्ठ फल हम लेके आए जी, आप ले लो, लेकिन हमें तो मोक्ष का फल चाहिए है। सारी द्रव्य इसी दृष्टि से अर्पित करते हैं अपन कि जी व्यर्थ है जी, हमें नहीं चाहिए, आप तो जी सब ले लो हमारी, छुड़ा लो ये, लेकिन हमें वो जो आपने प्राप्त कर लिया है वो हमें दे दो। जल परम उज्जवल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरूं, बर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरूं। सब मिला दी अपन ने, ई भांति अर्घ चढ़ाए नित भवि करत शिव पंगति मचूं, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूज। बसु विधि अर्घ संजोय, बसु का मतलब आठ होता, आठ प्रकार की द्रव मिलाओ सो अर्घ बन जाता, मनो उसमें अपने भाव से उसको मिलाना पड़ेगा। आठ तो अलग अलग हैं, अगर उनको अपने भावों से आप मिला देंगे तो एक बन गई वो आठ मिलकर। अति उत्साह मन की, बड़ा उत्साह है मन के भीतर, बड़ा उत्साह है मन के भीतर। जैसे कि बेटी की विवाह होता है तो बड़ा उत्साह होता, बेटे का विवाह होता तो वो उत्साह शब्द लिया इन्होंने। देखो तो घर में कोई बहुत बड़ा इस तरह का आयोजन हो तो कैसा उत्साह होने लगता है, एक हफ्ते पहले से जो है हमारे यहाँ पर ऐसा होने वाला, सब काम में लगे हैं, भी उते बरी बन रही, भी उते पापर मिल रहे हैं, जो सामान आ रहा है जो, अरे बताओ आप जी, जी तो उत्साह है और क्या, घर में सब लगे हैं काम में, कहा हो रो भैया ब्याह हो रो। तो ऐसे अपन पूजा में नहीं कर सकते कि हम तो पूजा करने जा रहे हैं, बड़ा उत्साह है मन में कि ये तो लाओ, ये चीज लाओ, ये सजाओ, अभी तो पूजा करनी, लेकिन ऐसा नहीं बन पाता है। संसार के कामों में जैसा उत्साह है वैसा शब्द तो एक डला उत्ता सा उत्साह शब्द, लेकिन उसका अर्थ तो देखो कि ऐसा उत्साह हमारे अंदर, ऐसा उत्साह पूजा करते समय अगर आ जावे तो वास्तव में पूजा भी हमारी श्रेष्ठ हो जावे, पूजा सार्थक हो जावे। तो भैया ऐसी पूजा अपन को करनी चाहिए। इस तरह पूरी पूजा समाप्त हुई। अब जो है उसमें जयमाल में तो भगवान के गुणों का वर्णन है, वो अपन कई बार कर चुके हैं इसी भावना के साथ में कि अपन को पूजा के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए वो भक्ति भाव से करके अपन उस लाभ को प्राप्त करें। आचार्य गुरुवर विद्यासागर में
वे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो,
अथवा वग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता
हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप सैल नदी तट पर करुतल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़ियां,
भव वंदन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पच पंची गुरुवर प्रणाम,
मिथ्यात्म
नाश देखो ज्ञान के प्रकाश आपा पर भास देखो मानुषी बकानी है,
चहू द्रव जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है,
अनुभव बताए वेको जीवों के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और यानी है,
जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है,
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुह दुखे दिन वाणी भारती तो जपो दिन रहन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख जन,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई,
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रजे
ओम रीम परम पूज्य 108 मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में, ओम रीम परम पूज्य 108 मुनि श्री भव सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में, अनर्घ पद प्राप्त आय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा।